नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम हमारे सोलो के टाइम पर कर रहे हैं एक वार्तालाप, और वार्तालाप के लिए हमारे साथ हैं CAA एक्टिविस्ट। जी हाँ, उनको हम CAA एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, और वो है जय आहूजा जी। जय आहूजा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाइयां। आपका जो ये
इस युद्ध में
स्ट्रगल था वो
लेके आप हमारे साथ रहे,
तो वो तो साथ रहने का, ये तो हमारा भी स्ट्रगल था, इस पे तो कोई बात ही नहीं
जी।
तो अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे अधिक ढोल नगाड़े कहाँ बज रहे हैं? बंगाल में बज रहे हैं, राजस्थान में बज रहे हैं कि दिल्ली में बज रहे हैं?
सबसे अधिक ढोल नगाड़े पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो जोधपुर में बज रहे हैं, उसके बाद जो सर्वाधिक संख्या है वो जैसलमेर में है, फिर बाड़मेर में है, फिर जयपुर में है। कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे कम या ज्यादा लोग इस आनंद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं।
आपको बंगाल की जानकारी नहीं है?
मना रहे हो? हाँ जी,
सबसे अधिक संख्या तो बंगाल में ही है।
हाँ, बंगाल में भी है, बहुत बहुत बड़ी संख्या है।
संख्या सबसे बड़ी वही है, संख्या सबसे बड़ी वही है और सबसे पुरानी भी है। वहाँ की मार्क्सिस्ट सरकारें और TMC सरकारें, उन्होंने उनकी जो ध्वनि है वो तो बाहर आने ही नहीं दी। तो इसीलिए मैं कल देख रहा था, वो वहाँ पे जो मतुआ, नामशूद्र, राजवंशी बहुत बड़ी संख्या में है वहाँ। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि ममता दीदी जो है वो कितना
जी, मतुआ आदिवासी हिंदू समुदाय के लोग हैं
ये सब जो है वहाँ, बहुत
तो फन निकाल के कई दिनों से जहर फैलाने लगी हुई है।
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताएं कि ये जो नियम जो अभी जारी हुए हैं, तो इन नियमों में और पुराने नियमों में क्या अंतर है? ये कैसे जो है वो पहले से आसान होगा? अभी ये अगर ऑनलाइन हो गया है तो इससे क्या समस्या जो है वो थोड़ी सरल हो जाएगी? क्योंकि ये तो उसमें लिखा है, मैं देख रहा था कल नियम, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने तो जाना ही पड़ेगा, और वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने आपको जो है वो ओथ लेनी है, फिर ओथ लेके आपको जो है आगे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने। क्या आपने प्रोसीजर जरा थोड़ा सा समझाया कि ये जो CAA के रूल्स में जो प्रोसीजर आया है इसमें क्या विशेष बात है?
सर, प्रोसीजर को लेके कोई नयापन नहीं है। पिछले 8-9 वर्षों से माननीय राजनाथ सिंह जी के समय से हम ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हैं और डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने फिजिकली इनको प्रेजेंट करते हैं। हमारा ऑफिस कैसे काम करता है, ये जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित लोग हैं, इनके लिए हमने पूरा अपना एक सेंटर बनाया हुआ है, जो जिसकी जानकारी आपको भी है। जयपुर में 2 सेंटर हैं, दोनों सेंटर पे डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट इनके डॉक्यूमेंटेशन को ठीक से जमा के, कोई कमी होती है तो नए कागज बनवा के उसको हम ऑनलाइन अपलोड करवाते हैं और फाइल लॉग इन करवाते हैं इनकी। उसके बाद में उसका एक फिजिकल सेट पूरा प्रिंट आउट लेके, जनरली हर शहर में ADM के पास में ये चार्ज डेलीगेटेड रहता है, जिनको भी कलेक्टर साहब देना चाहे उन ADM के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसमें व्यक्ति ओरिजिनल है, उसकी फोटो और सारी चीजों का मिलान होता है, और 1-30 सेकंड की बातचीत भी होती है। उसके बाद में वो फाइल प्रोसेस में चली जाती है, और फिर एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस आने में बहुत समय लगता है। CID के लोग बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं, जो राजस्थान सरकार के अधीन आती है, और वो एकदम समय पे अपनी जांच करके जमा भी करवा देते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। लेकिन IB की जांच बहुत समय लेती है। IB को चिट्ठी तो कलेक्टर साहब लिख देते हैं, लेकिन IB अपनी जांच रिपोर्ट अपने केंद्रीय कार्यालय को सबमिट करती है, और केंद्रीय कार्यालय के बाद में वो MHA के फॉरेनर डिविजन में जाती है, होम मिनिस्ट्री के। वहां से जब तक सिस्टम पे जांच अपलोड नहीं होगी तब तक नागरिकता नहीं मिल सकती। तो नए नियमों में जांच के समय को भी सीमित किया है, अनलिमिटेड टाइम तक आप किसी का डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकते। तो इससे मुझे लगता है कि काफी तेजी आएगी काम में। अभी तक हम कह नहीं सकते थे कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, अब हम ये कहने के अधिकारी हो गए कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, इससे समय बचेगा। दूसरी एक बहुत गंभीर समस्या है दीक्षित साहब, जिसको लेके CAA की पूरी लड़ाई लड़ी गई है। 1950 में जब पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 100 लोगों का डेलीगेशन लेके भारत आए, तो दोनों देशों के नागरिकों के मामले में बात हुई। बातचीत का आधार ये था कि सिंध के एक बड़े नेता थे आचार्य जेपी कृपलानी, वो पार्टीशन डीड पे साइन करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष थे। सिंध में 56% से अधिक हिंदू आबादी होते हुए भी सिंध का एक भी इंच पार्टीशन में हमको नहीं मिला, तो सिंध के हिंदू और सिखों ने कृपलानी जी जैसे बड़े नेता को कौम का गद्दार घोषित कर दिया। वो भले आदमी थे और वो इस बात को लेकर के अंत समय तक पछताते भी थे और दुखी भी रहते थे। उन्होंने नेहरू जी पे दबाव बनाया कि नागरिकों के बारे में बात करो और अब जो लोग आना चाहते हैं उनका क्या होगा। तो दोनों देशों ने ये तय किया आपसी सहमति से नेहरू लियाकत पैक्ट में कि भारत का कोई भी मुसलमान यदि पाकिस्तान जाना चाहेगा तो पाकिस्तान की सरकार उन्हें शरण भी देगी और उनकी प्राथमिकता से नागरिकता की व्यवस्था भी करेगी, क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया के नागरिक हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान का कोई भी गैर मुस्लिम यदि भारत आना चाहेगा तो भारत की सरकार उन्हें शरण भी देगी अनिवार्य रूप से और उनकी नागरिकता का भी प्रबंध करेगी और उनके रिहेबिलिटेशन का भी प्रबंध करेगी। भारत ने अपना वचन निभाया लेकिन पाकिस्तान ने अपना वचन कभी भी नहीं निभाया। इसी की लाइट में 1953
उन्होंने तो उल्टा किया था, उन्होंने तो उसके तुरंत बाद सारे भारतीय मुसलमानों का आना बंद कर दिया था वहां पे।
जी 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 मैं यही कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने अपना वचन कभी भी नहीं निभाया, हमने निभाया। उसके बाद में क्या होता है साहब, 1953 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है जो भारत के नागरिकता अधिनियम को लिखेगी, उसकी ड्राफ्टिंग करेगी। उसी दौर में खान अब्दुल गफ्फार खान 1954 में भारत घूमने आते हैं। सीमांत गांधी जिनको कहते थे, सीमांत गांधी पार्टीशन के विरुद्ध थे और वो गांधी जी के खिलाफ खड़े हो गए थे कि हमको धर्म आधारित देश नहीं चाहिए, हमको सभ्यता संस्कृति आधारित देश चाहिए, अगर देना है तो पख्तूनिस्तान दो, पाकिस्तान के आइडिया पे हमारी कोई सहमति नहीं है। और उनकी बात चली नहीं, गांधी जी ने उनको दबा दिया। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जिन्ना के साथ मिलकर एक ऐसा रेडिकल जिन्न खड़ा कर दिया है इस इलाके में कि वो आने वाले समय में अपने रेडिकलाइजेशन से हमारे अफगानिस्तान के इलाकों को भी प्रभावित करेगा और वहां के हिंदू और सिखों का भी जीवन भविष्य में नरक बनने जा रहा है, क्योंकि 6-7 साल में ही पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की प्रताड़ना की अनगिनत घटनाएं होने लग गई थी। उनकी बात को मानते हुए अफगानिस्तान जोड़ दिया गया, ये मूल प्रारूप है। और लाभार्थी कौन होंगे इसको भी तय किया गया। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का पहला क्लॉज है नेचुरलाइजेशन के जरिए 5(1) है, उसमें ये लिखा गया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान का अल्पसंख्यक है या अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक है उसने भारत में शरण दी है और वो 7 वर्ष या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है तो वो व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते वो ये साबित करे कि ये वो अनडिवाइडेड इंडिया के नागरिक है या उसकी पहली पीढ़ी है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं भारत आता अब, मेरे दादाजी नहीं आए होते और मेरा जन्म 1977 का है, पर मेरे पिताजी का जन्म 1946 का था, तो मैं यहाँ 7 वर्ष रहने के बाद में अपनी फाइल लगा देता कि साहब मेरे पिताजी जुलाई 1946 में पैदा हुए थे इसलिए मुझे अधिकार है भारत की नागरिकता लेने का 7 वर्ष बाद, तो मेरी फाइल लग जाती, प्रोसेस भी होती। पर मेरी पत्नी नहीं लगा सकती थी क्योंकि मेरे ससुर जी का जन्म 1951 का है और मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते थे। अभी हम नागरिकता इसी तरीके से ले रहे थे, पहले जय आहूजा फाइल लगाएगा, मेरे को 1.5 साल लगेगा, मेरे 1.5-2 साल में जब नागरिकता आएगी तो एक अगले सेक्शन में जहाँ जीवन साथी के लिए प्रावधान है कि भारत के नागरिक का जीवन साथी यदि 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो वो भी अर्ली सिटीजनशिप ले सकता है, तो मेरी पत्नी की फाइल लगेगी। जब हम दोनों की नागरिकता हो जाएगी तो 2 अलग अलग सेक्शन में माइनर और मेजर, वयस्क और अवयस्क बच्चों की फाइल लगेगी। तो हमारा ये क्लेम था कि आप नेहरू लियाकत पैक्ट के आधार पर 5 साल के बच्चे को भी भारत में शरण दे रहे हैं अपने माता पिता के साथ, तो आप 5 साल के बच्चे को नागरिकता 12 साल में जनरल क्लॉज में क्यों देना चाहते हैं? उस बच्चे के जीवन को रोकने से क्या लाभ मिलेगा? उस बच्चे की पढ़ाई रोकने से क्या लाभ मिलेगा? वो बच्चा यदि समय पे पढ़ लिख के अपने टैलेंट के हिसाब से कुछ बन जाता है तो भारत की जीडीपी दर में योगदान देगा और वो जो रोज सड़ सड़ के उन बच्चों को जिंदगी जीनी पड़ती है उन बच्चों का जीवन नरक बनने से बच जाएगा। हमारे इस आर्ग्यूमेंट को भारत सरकार ने सुना, उठा तो हम यूपीए के समय से रहते लेकिन तब कोई सुनने वाला नहीं था। तो 2016 में माननीय राजनाथ सिंह जी भी इसी प्रकार का सीए लेकर के आए थे लेकिन राज्यसभा में टेबल नहीं हुआ था। और अभी अमित शाह जी 2019 में राज्यसभा लोकसभा दोनों में उन्होंने पास कराया, नोटिफाइड हुआ, 10 जनवरी को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन भी कर दिए 2020 में। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि बार बार समय खिंचता गया, इस बीच में हजारों हिंदू पाकिस्तान में दबाव में आके कन्वर्ट हो गए और हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन फिर भी देर से आए पर भले आए, आज आ गया तो आज भी इसका लाभ 16,000 लोगों को राजस्थान में मिलेगा सीधे सीधे। और उसके बाद में भी जो लोग आए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, पर लाभ हर पाकिस्तानी हिंदू को मिलना लगभग तय है।
पाकिस्तानी हिंदू की भी बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू तो 16,000 ही हैं, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं
टोटल 36,000
उनकी
पूरे देश में
जी कितने?
पात्र लोग, संख्या ज्यादा है, पात्रता की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष या उससे अधिक, और एक्सपायर्ड पासपोर्ट वाले ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए। जो व्यक्ति 1 जनवरी 2015 को आया नागरिकता, उसको भी 5 साल बाद ही क्लेम करने का अधिकार है, परंतु उसको अपने वीजा और पासपोर्ट वैलिड रखने पड़ेंगे। इनवैलिड वीजा पासपोर्ट को नागरिकता नहीं ले सकता, एक्सपायर वीजा पासपोर्ट पे आए में।
इसमें एक प्रश्न और उठता है कि इसमें जो है जो डेट रख रही है आपकी 2014 की, जो कट ऑफ डेट है, तो 2014 की कट ऑफ डेट 2019 में जब बिल लाया गया था तब की है, 5 साल तो उसके
जी
बाद से हो गए, तो इसको आगे बढ़ाने के
लगभग
लिए भी आप
4 साल
कोई
भी हो
प्रयास
गए
करेंगे
सर।
क्या?
हम एक दूसरा प्रयास करेंगे, हम लगातार लिख लिख कर दे रहे हैं। अब चुनाव के बाद जो भी परिस्थिति बनेगी, भगवान करे दोबारा मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से आने ही वाली है, और अब जिनके पास भी गृह मंत्री की जिम्मेदारी होगी, अमित शाह जी भी शायद रिपीट ही होंगे जैसा लगता है देख के, तो हम उनसे मिलकर के कहने वाले हैं कि जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी ने 2 वर्ष के लिए एक बार नोटिफिकेशन निकाला, दिसंबर 2016 में, 23 दिसंबर 2016 को एक नोटिफिकेशन निकाला कि हम इन इन चुनिंदा कलेक्टर्स को और इन इन चुनिंदा गृह सचिवों को नागरिकता देने का अधिकार नीचे के स्तर पे देते हैं। हर एक व्यक्ति को नागरिकता लेने के लिए भारत सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, यदि आपकी पात्रता है तो आपको नागरिकता वहीं मिल जाएगी। और उन्होंने 2016 में जब निकाला तो उन्होंने 31 दिसंबर 2009 तक के लोगों के एक्सपायर्ड पासपोर्ट को अलाउ किया। फिर ये पावर 2 साल बाद खत्म होने वाले थे, पर पार्टी तब चुनाव के मूड में आ गई थी, तो भी एक बहुत अद्भुत काम किया माननीय राजनाथ सिंह जी ने। मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से 13 अक्टूबर 2018 को मिला और मैंने आग्रह किया कि साहब ये आप नोटिफिकेशन खत्म होने वाला है 2 महीने में, अभी तो नागरिकता बहुत लोगों की बाकी है। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा नहीं, हम बढ़ा रहे हैं, हमें ध्यान है। तो मैंने उनको आग्रह किया बहुत विनम्रता से कि साहब आप इसमें तारीख ना लिखें, आप ये लिख दें कि ये जो नोटिफिकेशन की अवधि बढ़ाई जा रही है ये अगले आदेशों तक बढ़ाई जा रही है। उन्होंने इसको लीगली वेट किया और उनको बात ठीक लगी, तो उन्होंने उस ऑर्डर को अगले आदेशों तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने से वो आदेश आज तक चल रहे हैं और कलेक्टरों की पावर बरकरार है, और हम लगातार कलेक्ट्रेट में जाके संबंधित जो भारत के 30 कलेक्टर हैं उनके यहाँ पे अलग अलग जगह हमारे लोग काम करते हैं और लोगों को नागरिकता वहां से मिल रही है। परंतु ये जो कट ऑफ डेट है इसके लिए भी हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको -5 5 ईयर्स कर दे सीधे। आपके अराइवल से 5 साल पहले अभी जो भी आए हैं उन सभी को ये लाभ मिलेंगे। उसका कारण है सर, यदि पासपोर्ट वैलिड रखना है तो पाकिस्तान एम्बेसी को 7,500 रुपये सालाना देने पड़ेंगे, वहां रिश्वत भी लगती है, तो हम भारत के लोग पाकिस्तान की एम्बेसी पे दबाव नहीं बना सकते। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी दुश्मन देश को इतना पैसा रेवेन्यू देने से क्या लाभ। जो पाकिस्तान का हिंदू और सिख भारत में शरण ले चुका और आपने उनको ऑफिशियली शरण दे दी है और उनको ऑफिशियली स्थायी वीजा ग्रांट कर दिया है, वो भारत में रह के पैसा कमा रहे हैं, उनका पैसा भारत में ही रहना चाहिए, तो उन बेचारों का आर्थिक शोषण हो इससे क्या लाभ। नागरिकता त्यागपत्र प्रमाण पत्र के लिए और पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए पाकिस्तान एम्बेसी के चक्कर लगाना और वहां पैसे भरना, इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है एज ए नेशन। और उन लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है, वो फुटपाथों पे पड़े रहते हैं, सुबह सुबह 4 बजे विंडो के बाहर लाइन लगाते हैं, 9 से 11 2 घंटे के लिए विंडो खुलती है, उस 2 घंटे में आपका नंबर आ गया तो आ गया, नहीं तो आपका नंबर नहीं आया तो कल आना। कई लोगों के काम नहीं होते छोटी मोटी अड़चनों के कारण या बड़ी चीजों के कारण या उनके मेलाफाइड बैड इंटेंशन जो है काफिरों के प्रति उस कारण, तो ऐसी परिस्थिति में लोग रिश्वत भी देते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक काम और होता है, वो ऑनलाइन जो फीस भर चुके अपने किसी भी काम के लिए वो फीस उनको पाकिस्तान एम्बेसी वापस नहीं देती, तो सिवाय शोषण के और दर्द के पाकिस्तान एम्बेसी में किसी भी हिंदू सिख को कुछ प्राप्त नहीं होता, तो हमारे लोगों को आप वहां लाइन लगाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं। आप ही ने तो इनको अधिकृत रूप से मान्यता दी है भारत में रहने की, आप ही ने तो इनका वीजा ग्रांट किया, तो आप इनको पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लाइन लगाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो। और एक और बहुत गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, और वो अभी भी सीए के माध्यम से उत्तर नहीं मिल पाया। 2020 में पाकिस्तान के दूतावास ने अपने नियमों को बदलते हुए ये कहा जब हम एक 12 साल के बच्चे के डॉक्यूमेंट सरेंडर करवाने हमने उसके माता पिता को भेजा, जयपुर कलेक्टर साहब ने कहा कि इस बच्चे की सारी नागरिकता की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप इनका पासपोर्ट सरेंडर करें पाकिस्तानी दूतावास में और वहां से नागरिकता त्याग पत्र का प्रमाण पत्र लाए, रेनाउंसिएशन सर्टिफिकेट। तो हमने उसके माता पिता को भेजा बच्चे के साथ, क्योंकि अथॉरिटी तो वही थे नाबालिग बच्चे की। तो माता पिता को कहा गया कि हम इसका पासपोर्ट नहीं लेंगे क्योंकि ये बच्चा नाबालिग है, जब ये 21 वर्ष का हो जाए तो इसको पाकिस्तान भेजिएगा, वहां का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जैसे हमारे आधार कार्ड होता है वो बनवाइए, बच्चे को वापस बुलाइए, उसके बाद बच्चा एफिडेविट देगा, तब हम 21 साल का होने के बाद इसको सरेंडर करने की अनुमति देंगे, हम नाबालिग बच्चे को अनुमति नहीं देते। अब आप एक बात बताइए दीक्षित साहब, माता पिता
ये
भाई
तो
बहन
सीधा सीधा ये है कि ट्रैप कर लिया कि हाँ वापस आइए जिससे हम
अब
आपको
माता
कन्वर्ट कर
पिता भाई
सके।
बहनों की नागरिकता भारत के चलित कानूनों में हो गई और नाबालिग बच्चे की नागरिकता अटक गई, तो अब जब कोई पाकिस्तानी नागरिक परिवार में बचा ही नहीं और वो पाकिस्तान का मुंह भी नहीं देखना चाहते, उन बेचारों का इतना हेरेसमेंट करने से क्या फायदा? तो ये सारे बड़े अनसुलझे प्रश्न है जिसका हम उत्तर खोजेंगे भी, और हमें विश्वास है जब भारत सरकार ने पॉलिटिकल विल अपनी दिखाई है और आखिर में बोल्ड डिसीजन लेते हुए सीए को लागू किया है, तो इस तरीके के जितने भी लीगल क्लचेज हैं, मुझे पूरा विश्वास है माननीय संघ अधिकारियों के सहयोग से, आशीर्वाद से, माननीय विश्व हिंदू परिषद अधिकारी जो हैं, माननीय विज्ञानानंद जी जैसे, प्रशांत हरतालकर जी जैसे प्रज्ञावान लोग जो हमारे को बैकअप देते हैं, उनके सहयोग और आशीर्वाद से हम इन नियमों को भी निश्चित रूप से बदला के लाएंगे, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम थी वो अब आइस ब्रेक हो चुकी है। मेन बात ये थी कि सीए लागू ही नहीं होगा या लागू होगा, तो लागू होगा तो उसमें सर्टेन छोटे मोटे चेंजेस छोटे बच्चों के लिए कराना, मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा आगे विषय रहेगा नहीं, दिक्कत आएगी नहीं, बहुत लोग लगेंगे हमारे साथ। अब तो मैं चूंकि खुद राजनीति में आ गया हूं, तो राजस्थान के कई सांसद एमएलए मंत्रियों से भी मेरी मित्रता है जो इन सारे मामलों पर हमको भरसक सहयोग करने के लिए तैयार है। इवन माननीय भजनलाल जी के चुनाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में, यहाँ सांगानेर में जहाँ जयपुर में मेरा घर है, जयपुर वाला मकान जो मेरा है, वहां पे बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू रह रहे हैं, आज मैं पूरे दिन उन्हीं के बीच में था, तो उनके विधानसभा क्षेत्र का भी अब ये बड़ा मामला है, तो मुझे लगता है हमको सब जगह से सहयोग मिलेगा।
एक जो और समस्या आती है जो पहले भी आपसे चर्चा हुई थी, और ये है कि जो इस समय पाकिस्तान में जो है हाई कमीशन है भारत का, वो परिवारों को एक साथ वीजा नहीं दे रहा है। कल मैंने ट्विटर पे भी इसका संकेत किया था, इस समस्या का क्या निदान है?
जी, वो पिछली बार जो आपने हमने पॉडकास्ट किया और खुल के एक व्यक्ति का काउंसलेट का नाम लिया था काउंसिल साहब का, अब वो काउंसिल साहब वहां रहे नहीं है, ये सब आपकी
अच्छा।
कृपा है। और अब जो पहुंचे हैं,
जानकर प्रसन्नता हुई।
हाँ, ये अब जो लोग पहुंचे हैं वो भंग परिवारों का वीजा नहीं दे रहे, पूरे परिवार को दे रहे हैं, और वीजा का प्रोसेस पहले की तुलना में वापस ठीक ठाक तरीके से चालू हो गया, लोगों का निकलना अभी जारी है, पहले की तुलना में तो नहीं लेकिन फिर भी महीने के 200-250 लोग हम निकाल पा रहे हैं अभी, तो लोग आ रहे हैं।
चलिए,
और ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया सर, 2000 वीजा की कैपिंग है दोनों तरफ से, हम ये कह रहे हैं वहां लाखों हिंदू हैं और 500 से ज्यादा वीजा हिंदुओं को मिल नहीं रहे महीने, तो लाखों हिंदुओं को हम कब निकालेंगे? और जो लाखों हिंदू हैं उसमें अधिकतम जो संख्या है वो आदिवासी हिंदू समाज के भील हैं, कोली हैं, बागड़ी हैं, ये सब दलित हैं, आपके मेघवाल हैं, तो इस प्रकार के समाज जो 90% दबे कुचले समाज है, और वहां वडेरों की जेलों में उनको बंद कर दिया जाता है, उनको हाड़ी रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको बहुत बुरी तरह से शोषित हैं, उनकी बच्चियों को सेक्स स्लेवरी के लिए उठा के ले जाते हैं, 4 बच्चियां हमारी हिंदुओं की सिखों की रोज उठाई जा रही है पाकिस्तान में, जिसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये सारे विषय भी बड़े गंभीर हैं कि नंबर ऑफ वीजा अगर नहीं बढ़ेंगे, महीने के कम से कम 10,000 वीजा तो होने ही चाहिए, नंबर ऑफ वीजा नहीं बढ़ेंगे तो हम इन लोगों को बचा कैसे पाएंगे? और हर बच्ची का उठना और उसका कन्वर्ट होना ये पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदुओं के माथे पर एक कलंक है, उन बच्चियों का श्राप हम सबको लग रहा है, ये बात हम खुल के कहते हैं मैं और ओमेन जी, और ये बात हम अपने सरकार में अपने पार्टी के लोगों को भी मजबूती से कहते हैं और आगे भी कहेंगे, और इसका भी निदान करेंगे कि कम से कम 10,000 वीजा प्रति माह पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को दिए जाए, उन दलितों को, उन आदिवासियों को दिए जाए।
बिल्कुल ये, लेकिन मैं बड़ी आश्चर्य होता है कि जब कोई भी दलित ग्रुप जो है वो ये मांग नहीं उठाता है।
सर, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, देखिए 370 हमारे ब्लड में ट्रैवल करती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, ये हम सालों से सुन रहे थे, इस पे संघ और भाजपा ने नैरेटिव बनाने पे लोगों को जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत से काम किया। इसी प्रकार से राम मंदिर के बारे में भी हमारे को बच्चे बच्चे तक जानकारी पहुंचाई किसी विचार परिवार के लोगों ने कि 500 साल पहले कैसे मीर बाकी आया बाबर का आदेश लेके कैसे तोपे लगा के मंदिर तोड़ा। तो जहां भगवान राम पैदा हुए थे हमको वो जगह किसी भी हालत में वापस चाहिए और पूरा देश खड़ा हो गया। ऐसे ही समान नागरिक संहिता भी हमेशा से कही जाने वाली एक बात थी, एक देश में दो विधान क्यों है, एक देश में दो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के पावर और उनके अधिकार अलग अलग क्यों हैं। तो इसी लाइन पे जब भारत में ट्रिपल तलाक आया तो पूरा समाज खड़ा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा की विशेष रूप से बीजेपी में भी बहुत गंभीर बात है कि हमको अपने कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं को पूरा पहले बताना चाहिए था कि सीए है क्या, क्यों लाया जा रहा है, इससे क्या अंतर आएगा। तो हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छा कार्यकर्ता है और विचार से और हिंदुत्व से बहुत गहरी उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, तो वो समाज के बीच में जाके लोगों को बताता। इतना ही तो बताना था कि नेहरू ने जो एक्ट बनाया उस एक्ट में मुसलमानों का नाम नहीं है, तो आज भी नहीं है। तो मोदी जी ने इस पर्टिकुलर अर्ली सिटीजनशिप के क्लॉज के लाभार्थियों को नहीं बदला, जो बेनिफिशियरी ग्रुप नेहरू जी ने तय किया था वही रखा है। एरिया ऑफ बेनिफिट जो किस किस जियोलॉजिकल भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को ये लाभ मिलेगा वो भी वही है, तो वो कुछ बदला ही नहीं ना। इन्होंने सिर्फ ये बदला कि एक आध जो राइडर लोगों की नागरिकता में ऐसी शर्तें थी उन शर्तों को ही तो रिमूव किया है। फिर ये नए लोगों को बुलाने के लिए एक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी भारत में जो लोग रह रहे हैं और धन की कमी के कारण पासपोर्ट एक्सपायर करवा बैठे या 7-7 साल से 13-13 साल नागरिकता के लग रहे हैं, समय को कम करने का ही तो प्रयास है। आप उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस में तो छूट दे नहीं रहे, भारत की सुरक्षा पे आप कोई समझौता कर नहीं रहे, मुसलमानों का नाम कैसे लिखेंगे भाई, जब नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों ने ये कहा कि अपने आपके देश की माइनॉरिटी मुसलमानों की जिम्मेदारी हम लेते हैं अगर आएंगे तो, और हमारे देश के माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम की जिम्मेदारी आप लोग यदि वो भारत आएंगे तो। तो नेहरू जी ने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा क्योंकि नेहरू जी ने तो अपने हाथ से मुसलमानों को देश दिया था। तो ये मूलभूत बात है जिसको कोई समझना नहीं चाहता, और हमारे लोगों को समझ में आ जाए विचारों को तो सबको समझा भी सकते हैं। अब सब तो जयपुर डायलॉग देखते नहीं है, पर पार्टी की कार्यशालाओं के जरिए ये मैसेज नीचे तक जाए इसका हम अभी भी प्रयास कर रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय जी, और एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई।
सर आपको भी बहुत बहुत बधाई, सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का रहा, आप सोशल मीडिया के जो मजबूत स्तंभ है हिंदू विचार के जिसमें आप अग्रणी है भारत में। मैं चलते चलते एक किस्सा बताता हूँ आपको दीक्षित साहब। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 थाने हैं, उसमें से एक थाने में मैंने SHO को फोन किया, वो अभी नए लगे हैं, कि ये मेरे व्यक्ति हैं और ये किसी जरूरी काम से आ रहे हैं, आप जरा इनकी बात सुन के मदद कीजिएगा। तो वो हमारे एक पंडित जी हैं, वो गए किसी काम से थाने में, तो SHO ने बैठाया, चाय वाय पिलाई और ये कहा कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जय आहूजा के यहाँ उनके साथ काम करूंगा। उन्होंने कहा कैसे, तो उन SHO साहब ने अपना मोबाइल खोल के जयपुर डायलॉग के मेरे पॉडकास्ट उनको दिखाए, महाराणा पुस्तक टेबल पे रख दी और अपना फोन निकाल के दिखाया, 1100 रुपए महीना निमित्तेकम को वो धर्मांश दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ओमेंद्र जी का और जय आहूजा जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, वो भगवान का काम कर रहे हैं, वो दैवीय काम कर रहे हैं, अपने लोभ लालच और अपने कामों से फुर्सत नहीं है, ऐसे में वो लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं और मैं जयपुर डायलॉग का हर शो समय निकाल के गाड़ी में चलते आते जाते देखता हूँ, मैं दीक्षित साहब का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो आपको पता नहीं है सर कैसे कैसे लोगों के मन में आपने और हमने मिलके ज्वाला जगा दी है, हम जैसे लोगों को आपने आवाज दी, इन निरी लोगों की दीक्षित साहब आवाज बने, ये कोई जय आहूजा की सफलता नहीं है, बहुत भावुक दिन है दीक्षित साहब, और आप जैसे बड़ों का जो हमको आशीर्वाद मिला, आपने इस लड़ाई में जो सहयोग किया, आपने जैसे दृढ़ होकर के अच्छे बुरे समय में धर्म के लिए देश के लिए काम किया, जितना क्रेडिट हमें है उससे अधिक क्रेडिट आपको है, आपका आशीर्वाद आपका स्नेह बना रहे और हम और देश के लिए धर्म के लिए और भी बड़े बड़े अच्छे काम करते रहे। ये तो शुरुआत है, अभी लाखों लोगों को वहां से निकालना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं और बहुत जल्दी माँ जगदम्बा की कृपा रही तो वीजा को बढ़वाने का काम भी करवाएंगे और ये जो छोटे मोटे क्लॉजेस बाकी रह गए इनको जुड़वाने का भी काम कराएंगे। बस आप तो हमारी आवाज ऐसे ही उठाते रहिए, मुझे लगता है आपकी आवाज मोदी जी तक जाती है वो सुनते जरूर है, अमित शाह जी तक जाती है वो सुनते जरूर है।
आपको बहुत बहुत
आपका
धन्यवाद,
जी बहुत
बहुत बहुत
आभार,
धन्यवाद
धन्यवाद,
आपको और दर्शकों को
थैंक
बहुत
यू,
बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे
जय
मातरम।
भारत, जय।